Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज के चार ज्येष्ठोत्तर सत श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के श्री श्री कृष्ण बलराम के श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एम गौरांग की ओम अज्ञान्तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रुत्वा नृप आसनगतम् बेनम् अति उग्रशासनम् निलिल्लिहु दस्यवः सद्यः सर्पत्रस्ता इव आखवः। पीछे का भी श्लोक आज है, दो नंबर का भी, लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे। श्रुत्वा नृपाशनगतम् बेनमत्युग्रशासनम् निलिल्यो दस्यवः सद्यः सर्पत्रस्ता इवाखवः। 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 श्रुत्वा सुनकर नृप राजा का आसनगतम सिंहासन पर आरूढ़ बेनम बेन को अति अत्यंत उग्र घोर शासनम दंड देने वाला निलिल्यु अपने को छिपा लिया। दस्य वह सभी चोर सद्य तुरंत सर्प सापों से त्रस्ता डरे हुए इव सदृश आखवह चूहे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, यह पहले से ज्ञात था कि बेन अत्यंत कठोर तथा क्रूर था, अतः जैसे ही राज्य के चोरों तथा उच्चकों ने सुना कि वह राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गया है, वे उससे बहुत भयभीत हुए और वे सब उसी तरह छिप गए जिस प्रकार चूहे अपने आप को सर्पों से छिपा लेते हैं। तात्पर्य, जब सरकार अत्यधिक निर्बल होती है तो चोर तथा उचक्के बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार जब सरकार प्रबल होती है तो सारे चोर उचक्के लुप्त हो जाते हैं या छिप जाते हैं। निसंदेह बेन अच्छा राजा न था, किंतु वह क्रूर तथा कठोर समझा जाता था। इस तरह राज्य चोर उचक्कों से मुक्त हो गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसके पहले श्लोक है, वीर मातर मा हुय सुनीथम ब्रह्मवादिन प्रकृत सम्मतम बेनम अभ्यसिंचन पतिम भुवः। तब ऋषियों ने बेन की माता रानी सुनीथि को बुलाया और उनके अनुमति से बेन को विश्व के स्वामी के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया, तथापि सभी मंत्री इससे असहमत थे। हम लोग महाराज अंग के विषय में सुन रहे हैं और बेन के विषय में सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग बतला सकते हैं कि ये बेन और अंग महाराज की चर्चा क्यों प्रारंभ हो गई? पहले तो ध्रुव महाराज की कथा चल रही थी, मनु महाराज के वंश के विषय में प्रश्न था, तो उसके उत्तर देते हुए ध्रुव महाराज की कथा चली, लेकिन अभी अंग और बेन की कथा क्यों आ गई? माताजी, इसको समझना चाहिए, ध्रुव महाराज की कथा कह करके मैत्रेय जी कह रहे हैं कि महिमानम विलोकास्य, इस ध्रुव की महिमा को देख करके देवर्षि नारद कई एक श्लोकों में ध्रुव की महिमा को प्रचेताओं की सभा में गाए, बीड़ा बजा करके प्रचेताओं की सभा में ध्रुव की महिमा का गान किए। जब इस प्रकार मैत्रेय ऋषि कहे तो विदुर जी प्रश्न कर दिए, नारद जी इतने महान हो करके और आनंद के साथ जिस सभा में कथा कर रहे हैं, भक्त की कथा कर रहे हैं, तो वो सुनने वाले भी, वह समाज भी बहुत महान होगा। और तीन श्लोक मैत्रेय जी उद्धृत किए, या जो 5-6 साल का लड़का जिस पद को प्राप्त किया, क्या ब्रह्मवादी ऋषि भी उस पद को प्राप्त कर सकते हैं? ऋषि ब्राह्मण जो तपस्वी होते हैं वे भी पद को नहीं, इस पद को नहीं प्राप्त कर सकते, तो फिर दूसरे क्षत्रियों के विषय में कुछ सोचा ही नहीं जा सकता है। और इस प्रकार ध्रुव की महिमा सुने और यह सुने कि प्रचेताओं की सभा में नारद जी बोले थे, और विदुर जी 4 प्रश्न किए, केते प्रचेतसा नाम, प्रचेतसा नाम, ये प्रचेता कौन है और कस्या पुत्र, ये किसके पुत्र हैं, और कस्यान्वये प्रख्यात, किसके वंश में हुए, और सत्रम वा कुत्र मासत, और सत्र कुत्र सत्रम मासत, ऐसे वो सत्र कहाँ हुआ, वो सत्र के स्थान के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, प्रचेताओं का परिचय चाह रहे हैं, प्रचेताओं के पिता का परिचय चाह रहे हैं, और प्रचेता किस वंश में जन्म लिए, किस वंश में प्रख्यात हुए, तो इस विषय में भी वो जानकारी चाहते हैं। चूंकि प्रचेता लोग ध्रुव के ही वंश में उत्पन्न हुए थे, और स्पष्ट प्रश्न है कस्यान वाये प्रख्यात, किस वंश में प्रसिद्ध हुए, इसलिए मैत्रेय ऋषि ध्रुव के ही वंश का वर्णन प्रारंभ किए। ध्रुव का पुत्र उत्कल था, वह राज्य स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह जन्म से ही शांत स्वभाव का था, और ये शासन का काम जिसमें दंड देना पड़ता है वो नहीं चाहता था, और ब्रह्म में लीन रहता था। वत्सर को राजा बनाया गया, यद्यपि वह छोटा था, उसका वंश चला, उसी में अंग महाराज हुए। अंग महाराज के विषय में आप विस्तार से सुने, बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन पुत्र से बहुत दुखी हो गए, पुत्र से बहुत दुखी, इतना दुखी हो गए कि अंततः एक दिन नगर से, घर से निकल गए। अब राजा घर से निकल गया तो बहुत लोग खोजने लगे उनको, जो भी प्रकृति थे, मंत्री लोग थे, वे खोजने लगे, लेकिन उदाहरण दिया गया है कि वे खोज नहीं पाए। जैसे कुजोगी न, जो कोई बुरा जोगी है, ठीक जोगी नहीं है, तो वह परमात्मा का अनुसंधान नहीं कर पाता है, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। तो उदाहरण दे रहे हैं, तो उदाहरण से ये लक्षित है कि अंग महाराज उस दिन उस नगर में ही छिप गए थे, अर्धरात्रि को घर से निकल गए कि पत्नी सो रही थी, और दूसरे लोग खोजते रह गए लेकिन पता नहीं चला। एक कुजोगिना शब्द से यह ध्वनित है, जैसे परमात्मा तो हृदय में ही है, लेकिन जब तक सच्चा जोगी नहीं है, साक्षात्कार नहीं कर पाता है, वैसे ही अबे खोजते रह गए लेकिन अंग महाराज को खोज नहीं पाए, ढूंढ नहीं पाए। उदाहरण से ऐसा लिखा गया है कि लक्षित हो रहा है, ध्वनित हो रहा है कि उस नगर में छिप गए थे और वे बाहर पूरा राज्य में खोजते रहे। अब राजा नहीं था, राज्य में बहुत दुर्व्यवस्था हो गई। अब इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं कि भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानं क्षेम दर्शिनः गोप्तरी असति वै नृणाम पश्यतः पशु साम्यता। मंत्री लोग खोजते रहे, राजा का पता नहीं चला, लेकिन ये जो चोर डाकू थे, बदमाश लोग थे, उनको तो अवसर मिल गया। अभी कोई राजा नहीं है तो वे अपना कार्यक्रम बढ़ा दिए, कह रहे हैं कि भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानं क्षेम दर्शिनः। अब ऋषि लोग विचार करने लगे कि यह तो बहुत विषम स्थिति आ गई, और वे देखने लगे निर्णाम पश्यंतः पशु साम्यता, वे स्पष्ट अनुभव करने लगे ये जो मनुष्य हैं वे पशु के स्तर पर हो गए। राजा रहता है तो मनुष्य अपने सीमा में रहते हैं, अब राजा के अभाव में पश्यंतः पशु साम्यता, ये देख रहे हैं कि आदमी भी एकदम पशु के लेवल का हो गया। पशु के लेवल का हो गया इसका अर्थ यह है, मनुष्य समाज का नियम है कि किसी एक व्यक्ति की अपनी पत्नी है, उसके साथ रहता है, उसका कुछ धन है, प्रॉपर्टी है, उसका उपयोग करता है। लेकिन पशुओं में यह नियम नहीं है, वहां पति पत्नी का संबंध नहीं है, कौन किसकी स्त्री है, पत्नी है, ऐसा कुछ संबंध नहीं है। और प्रॉपर्टी के विषय में भी जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, खा लेते हैं, छीन लेते हैं। तो यही स्थिति मनुष्य समाज में भी आ गई। पशु साम्यता का मुख्य अर्थ यही है कि दूसरे के धन को लोग हड़पने लगे, दूसरे के स्त्री को हड़पने लगे। अब ये लोग देखे ऋषि लोग कि ऐसा हो रहा है समाज में, लोकानम क्षेम दर्शिना, ये मुनियों के विषय में कह रहे हैं कि ये लोक का हित देखने वाले थे। वे विचार करने लगे कि कैसे संसार का हित होगा। तब यह विचार करके वे वीर मातर माँ हुई सुनीथम ब्रह्मवादिना प्रकृति सम्मतम बेनम अभ्यसिंचत पतिम भुवः। वे बेन की माता से मंत्रणा किए, वीर मातरम आहुय उससे मंत्रणा किए। क्या नाम है? सुनीथा, सुनीथा उसका नाम है। और ऋषियों के लिए कह रहे हैं ब्रह्मवादिना। और बेनम अभ्यसिंचत, राज सिंहासन पर बेन को अभिषिक्त कर दिए। ब्रह्मवादिना जो वेद शास्त्र जानने वाले ऋषि हैं, वे अभिसंचित कर दिए। इनका उल्लेख कर रहे हैं, इसका आशय यह है कि प्रधानता इनकी थी बेन को राज सिंहासन पर बैठाने में। ऋषियों की प्रधानता थी, और लोग भी सहयोग किए, मंत्री इत्यादि भी उसमें भाग लिए, वे लोग ही अधिकार किए, कार्य बहुत कार्य किए। लेकिन यहाँ उल्लेख ऋषियों का कर रहे हैं ब्रह्मवादिना, क्योंकि प्रधानता इनकी थी। और कह रहे हैं कि प्रकृति सम्मतम बेनम अभ्यसिंचत भुवः पति, प्रकृति के असम्मत था। प्रकृति राज्य के अंग को कहते हैं, अष्ट प्रकृतयः, राज्य के आठ अंग होते हैं। तो राजा तो था ही नहीं, मंत्री लोग पसंद नहीं कर रहे थे बेन को, प्रकृति असम्मत, या कहीं कहीं पाठ भेद है प्रकृत्या असम्मत, स्वभाव से वह राजा बनने लायक नहीं था। लेकिन फिर भी ब्रह्मवादिना जो वेद शास्त्र को जानने वाले हैं, वे ऋषि लोग अभ्यसिंचत राज सिंहासन पर बैठा दिए। एक प्रश्न उठेगा कि ये धार्मिक व्यक्ति हैं, ब्रह्मवादी हैं, और पहले इनका परिचय दिया गया है क्षेम दर्शिना, लोकानम क्षेम दर्शिना, ये समाज के कल्याण को देखने वाले हैं। ये लोग स्पष्ट मंत्री लोग विरोध कर रहे थे, वे सहमति नहीं दे रहे थे, प्रकृति असम्मत, और फिर भी राज सिंहासन पर क्यों बैठा दिए? एक प्रश्न होगा ना, जैसा आप आगे पढ़ेंगे वर्णन, उस साफ लिखा गया है कि जब बेन राज सिंहासन पर बैठ गया तो एकदम घोषणा कर दिया कि ना, इस राज्य में विष्णु अष्टभ्य नहीं है, विष्णु का पूजन नहीं होना चाहिए। और भेष भेरी घोषेण सर्वतः, डुग्गी पिटवा दिया कि ना, अरे राजा की पूजा होनी चाहिए, राजा में ही सारे देवताओं का वास है। और ऐसा कहा कि जो राजा की पूजा छोड़ करके दूसरे की पूजा करेगा, विष्णु की पूजा करेगा, तो उसको दंड भी दिया जाएगा। और ऐसे भी बहुत बुरी बात है विष्णु की पूजा करना। वो उदाहरण दे रहा है कि विष्णु की पूजा करने वाले तो उल्टा स्त्री के समान है। जो पति भरण पोषण कर रहा है और उसकी सेवा छोड़ करके कोई स्त्री दूसरे पुरुष की सेवा करे, वो तो बहुत निम्न स्थिति है उसकी, जारम उपासते। वैसे ही राजा में सारे देवताओं का वास होता है, प्रत्यक्ष वो मेंटेन कर रहा है, सबका भरण पोषण कर रहा है, और उसको छोड़ करके कोई दूसरे की पूजा कर रहा है ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा घोषणा करने वाले व्यक्ति को ये लोग राज सिंहासन पर बैठा रहे हैं, और इनके पहले ही विशेषण दी जा चुकी है, पहले ही विशेषण दिया गया है कि लोकानम क्षेमदर्शिनः, ये लोगों के कल्याण को जानने वाले हैं। तो थोड़ी सी असंगति आ रही है ना कि ये क्या कल्याण जानने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति को राज्य सिंहासन पर बैठा रहा है जो भगवान की पूजा बंद करा देगा, और फिर भी ऋषियों को कहा जा रहा है लोकानम क्षेम दर्शिनः, ये क्षेम जानने वाले हैं। तो ये तो असंगति लग रही है, लेकिन समझना चाहिए। उधर कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि पशुना निर्णाम पशु साम्यता, वे राजा नहीं है, तो राजा की आवश्यकता है। वे स्पष्ट देख रहे थे कि मनुष्य समाज पशु के स्तर पर आ गया, दूसरे के धन और स्त्री व्यक्ति कब्जा कर रहा है, तो राजा की आवश्यकता है। यदि राजा न रहे तो समाज का कल्याण नहीं होगा, बहुत भारी अहित है। तो इस दृष्टि से वे राजा बनाए, समाज की स्थिति को देखे, तो इसलिए क्षेम दर्शिनः कहा जा रहा है। वे एकदम स्पष्ट अनुभव किए इन्हें राजा होना ही चाहिए, जब तक राजा नहीं रहेगा तो समाज ठीक से नहीं चलेगा। अब दूसरा प्रश्न यह है कि ठीक है, राजा की तो आवश्यकता है, यह तो हम मान लिए, लेकिन बेन को ही क्यों बैठा दिए? किसी दूसरे को राजपद पर बैठा देना चाहिए था, अच्छे व्यक्ति को, कि वीर मात्र माँ हुई, वे सुनीता से, बेन की माता से मंत्रणा किए, और पुत्र के विषय में माता और पिता में भेद था। पहले ही आप सुने हैं कि माता मह मनुव्रता है, ये बेन अपने नाना का अनुयायी हो गया। बेन की जो माँ है अधर्म की वंश की है, मृत्यु की पुत्री है, यह बेन के विपरीत नहीं थी। वैसे भी अब माँ का तो स्नेह पुत्र से होता ही है, पिता भले ही स्नेह तोड़ दे, माँ के लिए स्नेह तोड़ना बहुत कठिन है। ये लोग माता से जब मंत्रणा किए तो माँ सहमति दी कि नहीं, हमारा बेटा ही होना चाहिए। तो अब थोड़ा विचार कीजिए कि माँ कह रही है कि हमारा बेटा ठीक है, राज्य पद पर बैठना चाहिए, ये लोग किसी दूसरे को बैठा देते तब तो बहुत भारी विरोध वहीं खड़ा हो जाता ना, ये लोग तो मान्यता नहीं देते। और राजा के पत्नी और पुत्र ही राजा के खिलाफ, राजपद के खिलाफ में लड़ने लगे, बहुत भारी लड़ाई चलेगी, तो उससे भी जनता का बहुत भारी हित होगा, बहुत भारी अहित होगा। तो इसलिए ये विचार कर लिए कि यदि दूसरे को हम लोग बैठाते हैं तो ये तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा, तो इससे जनता की बहुत भारी क्षति होगी। तो इस अर्थ में लोकानम क्षेम दर्शिनः कहा जा रहा है, मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं ऋषियों की। या दूसरी बात और है, ये लोग विचार किए कि ये तो बेन में अधर्म का अंश है, लेकिन जब तक यह मरेगा नहीं तो इसके अधर्म को दूर नहीं किया जा सकता। मर जाने के बाद तो उसके शरीर को मथ दिए ऋषि लोग, जांग को मथ है तो वो काक पुरुष के रूप में, निषाद के रूप में जो बुरा अंश था तो वह निकल गया, और इसके बाद इसी बेन से पृथ्वी महाराज का जन्म हुआ। तो क्षेम दर्शिनः कहने का आशय यह है कि ये सब विचार ऋषि लोग कर लिए, इसलिए बेन को ही राज सिंहासन पर बैठा दिए। तो अब तो सफिशियंट ग्राउंड मिल जा रहा है ना कि बेन को ही क्यों बैठाया गया। ये कह रहे हैं कि वीर मातर मा हुई, ये एक साथ लिखा रहेगा तो बेन की माता को, या वीर अलग कहीं कहीं पाठ है तो विदुर जी के लिए संबोधन है। तो प्रकृति असम्मतम बेनम अभ्यसिंचत पति भुआ, पृथ्वी का स्वामी बना दिए, राज सिंहासन पर अभिसिंचित कर दिए। श्रुत्वा निपासन गतम बेन मत्युग्र शासन, जे ही पता चला सुने कि बेन बैठ गया राज सिंहासन पर, वो प्रधानमंत्री हो गया, ये जो चोर डकैत थे वो तो तुरंत छिप गए, क्योंकि अत्युग्र शासन, बेन बहुत उग्र शासन का था। आप पहले ही सुने होंगे बेन के विषय में कि आक्रीड़े वो खेल के मैदान में जाता था, ऐसे लड़के जाते हैं खेल खेलने के लिए, कितना आनंद से खेलते हैं, वो धक्का मुक्की भी करते हैं तो एक प्रेम का ही व्यवहार होता है, लेकिन वो जाता था तो वयस्या नति दारुण, वो जो अपने समान उम्र के लड़के थे पशु मारम मारयत, एकदम पशु जैसा मारने लगता था, बहुत मारता था। सोचिए कि जो अपने दोस्तों को पशु जैसा मार रहा है, कोई गलती नहीं किया है, और अब उसको पता लग जाए कि कोई गलती करने वाला है तो उसको कितना मार मारेगा। तो इसलिए ये जो दस्यु लोग थे तुरंत छिप गए, क्योंकि ये पता चल जाने पर तो छोड़ेगा नहीं, बहुत मार मारेगा। उग्र शासनम प्रकृति दारुण, उसके लिए पहले ही शब्द आया है प्रकृति से ही कठोर था। कभी कभी किसी पद पर अच्छे व्यक्ति को, कोमल हृदय के व्यक्ति को बैठा दिया जाता है तो वह ठीक से निर्वाह नहीं कर पाता है, कभी कभी रोकने के लिए बिना कूपन खाया, जैसे किसी को गेट पर खड़ा कर दिया, कितने लोग अब छोड़ते जाते लेकिन कोई कोई है गेट पर खड़ा पहले ही, ना उधर नहीं जा बेन अपने क्रूरता के लिए कुख्यात था, उसका नाम सुने तभी ये चोर डकैत छिप गए। उदाहरण दे रहे हैं कि सर्पत्रस्ता इवा खव, से चूहे हैं तो चूहे इधर से उधर बहुत करते रहते हैं अब उनको आवश्यकता है कि फालतू का वो संग्रह करते रहते बहुत संग्रह करते हैं गांवों में, आप लोगों को पता नहीं अनुभव है कि नहीं, कभी कभी लड़के वो खोदते हैं चूहे का बिल तो बहुत संग्रह मिलता है, धान का बाल ले जाकर रखे रहते हैं, लेकिन सांप उधर आ जाए तो बस एक भी नहीं निकलते हैं अपने बिल से, सब बिल में छिप जाते हैं, तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि जे ही श्रुत्वा बस ये पता चला सुने कि बे नवराज सिंहासन पर बैठ गया वो राजा हो गया तो सब लोग छिप गए। तो यही इस श्लोक में कहा गया है। बेन के लिए कह रहे हैं कि अति उग्र शासनम, बहुत दंड देता था और तुरंत दस्य वह जो तस्कर थे छिप गए। लेकिन ऋषियों के विषय में जो शब्द शुरू के श्लोक में दिया गया क्षेम दर्शिन, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और ऋषि लोग भी राज्य व्यवस्था में इन्वॉल्व हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं, इसका सिद्धांत वे दिए हैं। राजा की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि जब बेन को लोग मार दिए, एक दिन वे सरस्वती नदी के तट पर स्नान कर रहे थे, वहां बैठे थे, देखे प्राण सुधावता अभिलुम्पता, एकदम ऐसे लूटपाट हो रही थी, मैंने दिन में ही वो लूट करके भाग रहे थे, धूल उड़ रहा था, जैसे गाय चलती है या सैनिक चलते हैं और धूल उड़ता है, वैसे चोर डाकू इतने बढ़ गए थे कि धूल उड़ रहा था। और ऋषियों का बहुत भारी इसमें भूमिका है। अब देखें कि राज्य में विप्लव न हो, गृह युद्ध न हो, इसलिए बेन को ही राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दे, क्योंकि उसकी मां चाह रही थी उसी को। लेकिन जब बेन बहुत बुरा व्यवहार करने लगा, भगवान के भक्ति को रोकने लगा, और फिर ऋषि लोग चिंता में पड़ गए, तो जनता का कल्याण तो नहीं हुआ। वे विचार करने लगे तो जनता की वह स्थिति हो गई जैसे किसी लकड़ी पर कोई चींटी हो और दोनों तरफ आग लग जाए, तो उस चींटी की स्थिति होगी। कोई लकड़ी है और दोनों तरफ आग लग जाए तो अब चींटी किधर भी जाएगी, उसको जलना ही है। तो कह रहे हैं कि तस्कर पालय हो, ये जनता तो ऐसे चिट्टी के समान फंस गई, एक तरफ चोर का भय है, दूसरी तरफ राजा का ही भय हो गया। और इसी लोग कहे कि एक बार हम लोग उसको समझाते हैं, शायद मान जाए। जैसा वो विष्णु भक्ति का विरोध कर रहा था तो भीतर से उनको बहुत क्रोध था, लेकिन गूढ़ मन्य वह अपने क्रोध को छिपा करके और गए समझाए कि भगवान की भक्ति करने से सब प्रकार से लाभ होता है, जस मिलता है, सुख मिलता है, यह लोक भी ठीक रहता है, परलोक भी ठीक रहता है। लेकिन वह ऋषियों के खिलाफ भाषण करने लगा, एक तुम लोगों की बुद्धि उल्टी हो गई है, लोग राजा के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। इसके बाद तो गूढ़ मन्य वह नहीं रूढ़ मन्य वह ऋषियों का क्रोध उभर आया। और ब्रह्मवादी न, वे ब्रह्मवादी हैं, तपस्वी हैं, इनमें शक्ति है, तो अपने हुंकार से ही, अपने आवाज से ही, हुंकार से ही, साप से ही उसको मार दिया। और ऋषि लोग साप से क्या मारे, पर टिप्पणी किया गया हतम अच्युत निंदया, वो तो भगवान की निंदा किया था तो एक तरह से पहले ही मर गया था। तो ऋषि लोग समाज के कल्याण के विषय में चिंतित हैं, क्योंकि यह शास्त्र का सिद्धांत है कि ब्राह्मणा समदृक शांत लोकानाम समुपेक्षक, कोई ब्राह्मण भी है शांत है लेकिन समाज की उपेक्षा कर रहा है, तो श्रवते उसका जो तपस्या है, तेज है, भिन्न भांड पयो यथा, वह वैसे ही खत्म हो जाता है उसका तेज, जैसे किसी मटके में, किसी घड़े में पानी है वह क्रेक कर जाए तो धीरे धीरे पानी बह जाता है। तो दीनानाम समुपेक्षक लोकानाम समुपेक्षक, जो लोक के कल्याण को उपेक्षा करता है भले ही वो ब्राह्मण है इन उसका भी तेज समाप्त हो जाता है। इसलिए ऋषि लोग भी लोक के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं, यह सिद्धांत है। हम लोगों को भी लोक के कल्याण में जरूर कुछ भाग लेना चाहिए। आप विचार करेंगे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत भारी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है। बहुत भक्तों का अनुभव है, उनके हाथ में पुस्तक आया तो पढ़ करके भक्त हो गए। बहुत भारी कल्याण का साधन है और खूब उत्साह के साथ पुस्तक वितरण में भाग लेना चाहिए। ऋषि लोग जैसे जनता के कल्याण के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम लोगों को भी अपने स्तर से कुछ करना चाहिए। तो इस श्लोक में केवल इतना ही है कि जब बेन राज सिंहासन पर अभिषिक्त हुआ, ऋषि लोग उसको राजा बना दिए, तो जो चोर डकैत थे वे तुरंत वैसे छिप गए जैसे सांप के भय से चूहा बिल में छिप जाता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ हाँ, किधर है मृत्यु के देवता यमराज है? निर्वृत्ति, निर्वृत्ति आया है, मृत्यु के देवता का नाम निर्वृत्ति ऐसे आया है, निर्वृत्त ये देवता है। आए बहुत क्लोज हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं ये पता है कि मृत्यु के देवता यमराज जी हैं। यमराज जी तो दंड देने वाले हैं, वो तो मजिस्ट्रेट हैं। हाँ 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 फोर्थ कैंटो के प्रारंभ में वहीं से तो शुरू हुआ है। नृत्य नृत्य, लेकिन ये जो देवता का स्थान है वो मृत्यु के देवता या यमराज जी का एक दिशा में है। नैऋत्य कोण कहते हैं ना, चार कोण में एक नैऋत्य कोण है, तो जिधर यमराज जी हैं उधर ही वो कोण है। तो मृत्यु के देवता नृत्य ऐसे आता है शब्द। यमराज जी मजिस्ट्रेट हैं, दंड देते हैं, और फिर एक और प्रश्न आ जाता है, ये धर्मराज और यमराज ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं पोस्ट के अनुसार इनका नाम बदल जाता है। मृत्यु के देवता का नाम मैं निर्ति पढ़ा हूं ऐसे है। इन लोगों का ऑफिस एक दिशा में ही है, सब रिलेटेड है। और कुछ? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।